और आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम 3 मिनट ईश्वर पिता की याद में बैठेंगे और उसके बाद विधिवत रूप से आज का ये सेशन प्रारंभ होगा। शांति। आज के हमारे मेहमानों का, महानुभावों का अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करता हूं ब्रह्मा कुमारी बहनों से कि बैज और पटके के द्वारा आज के हमारे माननीय अतिथि प्रोफेसर दिनेश चहल जी हमारे मुख्य वक्ता ब्रह्मा कुमार राजयोगी गिरीश भाई साहब, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी संतोष बहन, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पिछले 87-88 वर्षों से नैतिक, मानवीय व आध्यात्मिक मूल्यों की सेवा हेतु अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है और समाज को एक नई दिशा देने का कार्य ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बखूबी से कर रहा है। क्योंकि हम सभी जानते हैं आज के समाज की हालत, आज का समाज दिन प्रतिदिन मानवीय और नैतिक चारित्रिक मूल्यों में गिरावट आती जा रही है, समाज गिरावट की तरफ बढ़ता जा रहा है, ऐसे में आवश्यकता है आध्यात्मिकता की। हमारे बीच में आज के चेयरपर्सन परम आदरणीय राजयोगिनी शांता दीदी जी पहुंच चुके हैं। हम उनका करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं और बहनों से निवेदन है कि दीदी जी का स्वागत करें। आज समाज में विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठनों संस्थाओं के द्वारा हम सभी मिलकर के समाज को श्रेष्ठ बनाने की सकारात्मक बनाने की तरफ अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, लेकिन हम ज्यादा बाह्य रूप से समाज को सशक्त करने की तरफ लगे हुए हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय समाज को आंतरिक रूप से सशक्त कर कैसे हम एक दिव्य श्रेष्ठ समाज की स्थापना कर सकें, इस उद्देश्य को लेकर के पिछले कई वर्षों से यह समाज सेवा प्रभाग अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है और आज बहुत सुंदर विषय लेकर के उपस्थित हुए हैं। पॉजिटिविटी द एसेंस ऑफ लाइफ, सकारात्मकता जीवन के लिए महत्वपूर्ण कैसे है, किस तरह से हम, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। किसी भी सामाजिक समस्या का, पारिवारिक समस्या का समाधान पॉजिटिविटी में है। जितना हम सकारात्मक सोचेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो सामाजिक समस्याओं का निदान भी सहज कर सकते हैं और हम एक अच्छे श्रेष्ठ समाज का निर्माण कर सकते हैं, जैसे कि इसका मुख्य विषय ही है समाज का समृद्ध समाज की पुनर्स्थापना, कि एक समृद्ध समाज हो। क्योंकि एक समाज था जहां आपस में भाईचारा था, प्रेम था, शेर और गाय घाट पर पानी पीते थे, आपस में मिलकर के कार्य करते थे, लेकिन आज उसमें कमी आ गई, तो उसके लिए आवश्यकता है पॉजिटिविटी की। तो कैसे हम पॉजिटिव रह करके और इस समाज को दिव्य श्रेष्ठ और इसकी पुनर्स्थापना कर सकें, इसके लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं आज के मुख्य वक्ता परम आदरणीय राजयोगी भ्राता ईवी गिरीश जी। आप पिछले 24 वर्षों से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े और आप अपने जीवन को समर्पित कर पूरी तरह से न केवल भारत देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, आईटीआई, इसरो और मेडिकल आदि में आप अपने वक्तव्यों के द्वारा समाज को नई दिशा देने का कार्य आप कर रहे हैं और हम सभी का परम सौभाग्य है कि आज हम आप हमारे बीच में एक सुंदर विषय लेकर के उपस्थित हुए हैं। मैं निवेदन करता हूं परम आदरणीय राजयोगी भ्राता ईवी गिरीश जी से कि आज का ये मुख्य विषय पॉजिटिविटी द एसेंस ऑफ लाइफ के ऊपर आप अपने विचार रखें। आदरणीय गिरीश भाई साहब,
ओम शांति। सभी बहुत प्यार से कहें ओम शांति, मुस्कुराकर कहिए उमंग उत्साह और जोश से कहिए। नमस्ते। हाथ जोड़ा सबने? हाँ, फिर से कहिए नमस्ते। गुड इवनिंग। इवनिंग गुड है? सबका इवनिंग गुड है? बहुत अच्छा। कल से तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा चल रहा है। मॉर्निंग भी गुड है, आफ्टरनून भी गुड है, इवनिंग भी गुड है, नाइट भी गुड है, क्योंकि हम कहां पर ऐसे पॉजिटिविटी के खान या केंद्र में आए हैं, जहां पर सकारात्मकता के सागर के द्वारा स्थापन की हुई ये बहुत सुंदर स्थान है। आपको ऐसा महसूस होता है? ऐसा फील होता है आप लोगों को? बहुत अच्छा। आज आदरणीय मंच, दीदी जी, भाई साहब और सभा में उपस्थित हमारे बहुत 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 सदा सकारात्मक रहने वाले भाइयों और बहनों, आप लोग हमेशा पॉजिटिव रहते हैं? जो पॉजिटिव रहते हैं वो हाथ ऊपर उठाएं। अच्छा, ये तो सब पास हो गए। हमेशा पॉजिटिव रहते हैं या कभी कभी रहते हैं? जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। एक बार मैं ऐसी सभा में बोल रहा था, जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं हाथ ऊपर उठाओ, तो काफी लोगों ने हाथ ऊपर उठा दिया। और जैसे ही हाथ ऊपर उठाया तो पत्नी पति को कहती, कहां रहते हो, मैं तो सब जानती हूं आपके बारे में, पब्लिक में झूठ नहीं बोलो। आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, आप तो सच्चे हो सदा, झूठ तो आप लोग कभी। भाई लोग ताली बजा रहे हैं, इससे बहुत कुछ पता चलता है कि आप लोग पब्लिक में तो हमारे से अच्छा जिंदगी में कोई है ही नहीं है, असलियत कुछ और हो सकती है। चलिए भाइयों और बहनों, जीवन का जो आधार है और जो जीवन का उद्देश्य, वो सही अर्थों में वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है जिसके जीवन में, विचारों में, बोल में और कर्म में सदा सकारात्मकता हो, पॉजिटिविटी हो। आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक होटल में एक वेटर जो खाना सबको टेबल में लाके देता है, वो काम करता था वहां पर। एक दिन खाना देते समय कस्टमर्स को, जो ग्राहक थे, खाना देते समय उससे गलती हो जाती है और खाना से भरा हुआ प्लेट उसके हाथ से नीचे गिर जाता है और वो प्लेट खाना सहित नीचे गिर के टूट जाता है। जब ये बात वो होटल के मैनेजर को पता चलता है तो उसको बड़ा गुस्सा आता है और वो इस वेटर के पास जाकर कहता है, ये तुमने बहुत गलत किया, कितना बड़ा नुकसान हो गया और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो वो वेटर कहता है, साहेब मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूं, मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं हुई है, आज पहली बार ऐसी गलती हुई है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो जो मैनेजर कहता है, अगर मैं हर एक व्यक्ति की गलतियों को ऐसे माफ 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 करता रहूं तो फिर तो ये होटल ही बंद हो जाएगा। हर एक व्यक्ति को जिम्मेवारी के साथ, अटेंशन के साथ, लगन के साथ, बिना गलती के साथ काम करना चाहिए। अब तुमने गलती की है तो इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। वो वेटर पांव में पड़ जाता है उस व्यक्ति के और कहता मैनेजर के, बोला सर प्लीज ऐसा मत करिए, मैंने आज तक कोई गलती नहीं की, आज पता नहीं कैसे गलती से प्लेट टूट गया है। मैनेजर कहता है, नथिंग डूइंग, तुमको इसकी सजा अवश्य मिलेगी। और मैनेजर बड़े गुस्से में था, उसने अकाउंटेंट को बुलाया और कहा, मुझे अभी के अभी तुरंत बताओ ये जितना नुकसान हुआ है वो कितने का नुकसान हुआ है, और पूरे पैसे की भरपाई मैं इस वेटर के तनख्वाह में से, इसके पगार में से काटूंगा। अकाउंटेंट जाता है, पूरा देखकर आता है, उसका चेहरा ही लाल हो जाता है। तो मैनेजर अकाउंटेंट को पूछता है, तुम ऐसे क्यों, तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों है? कहता है, साहब ये जो नुकसान हुआ है ना, पूरे 5,000 रुपए का नुकसान हुआ है। ये जो प्लेट है ये भारत का प्लेट नहीं है, ये विदेशी हमने इंपोर्ट किया हुआ है। बहुत कॉस्टली प्लेट था वो, और उसके अंदर का जो खाना है सब मिला के लगभग पूरे 5,000 भारतीय रुपए, 5,000 इंडियन रुपीज का नुकसान। ये देखते ही साथ मैनेजर को और गुस्सा आता है, उसको और आधा घंटा सुनाता है, तुमको ध्यान से काम करना नहीं आता, पता नहीं कैसे कैसे लोगों को नौकरी दे देते। अकाउंटेंट को कहता है, अकाउंटेंट इसके पगार में से अभी के अभी पूरे 5,000 रुपए कट कर दो। ये देखते ही साथ वो जो वेटर होता है उसके चरणों पे गिर जाता है और कहता है, रोने लगता है और कहता है, मालिक माफ कर दो, गरीब इंसान हूं, 5,000 रुपए तो मेरी मंथली सैलरी है, अगर वो पूरा आपने काट दिया तो हमारा घर कैसे चलेगा, बच्चों की फीस, बिजली पानी खर्चा, खाना सब्जी भाजी, प्लीज ऐसा मत करिए, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, मैंने कभी चोरी नहीं की, मैंने कभी कोई बात को टाला नहीं, आप पूछ सकते हैं। मैनेजर भी थोड़ा सज्जन व्यक्ति ही था, उस मोमेंट में उसको गुस्सा आ गया था, उसने सुपरवाइजर को बुलाया और पूछा कि ये जो कह रहा है व्यक्ति अच्छा है सच है? सुपरवाइजर कहता, हाँ साहेब भरोसे का व्यक्ति है, आज तक इसने चोरी नहीं की और जो काम बोला जाता है ना वो दिल से करता है, माफ कर सकते हैं। अकाउंटेंट मैनेजर कहता है, ठीक है, क्योंकि सुपरवाइजर तुम्हारे बारे में अच्छी बातें मुझे बता रहा है तो एक मैं तुम्हें कंसेशन दे सकता हूं, पूरे 5,000 रुपए एक साथ नहीं कट करूंगा, हर महीने 50-50-50 रुपए ही कट करूंगा। ये सुनकर वेटर कहता है, साहेब बात तो बराबर ही है, आप एक साथ पूरा 5,000 ले लो या हर महीने 50-50, फाइनली तो मेरे जेब से ही जा रहा है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैनेजर कहता है, नाटक मत कर, बहस मत कर, नौकरी करना है कि नहीं करना है, अगर नौकरी करना है हर महीने 50-50, और नहीं करना है तो अभी बोरिया बिस्तर बांध और निकल जा, नौकरी पर नहीं आना कल से। वो कहता, नहीं नहीं साहेब नौकरी से मत निकालिए, अकाउंटेंट हर महीने 50 रुपए। अब बेचारा कुछ कर तो सकता नहीं है, पूरे दिन का काम बड़े लगन से करता है और शाम को घर जाता है। घर जाते समय मार्केट में से एक बड़ा सा गुलदस्ता खरीदता है और घर जाकर दरवाजा खटखटाता है। जब उनकी पत्नी दरवाजा खोलती है तो देखती है कि पति देव इतना बड़ा गुलदस्ता लेकर के आए हैं, बड़ा खुश हो जाती है वो, और वो सोचती है कि आज ऐसी खुशी का क्या संदर्भ है कि ये मेरे लिए इतना बड़ा गुलदस्ता गिफ्ट के रूप से लाए, आज तो बच्चों का भी बर्थडे नहीं है, मेरा भी बर्थडे नहीं है, इनका भी बर्थडे नहीं है, मैरिज एनिवर्सरी वो तो पति लोग कभी सेलिब्रेट ही नहीं करते बेचारे, ऐसा है क्या? आप लोग मुस्कुराइए मत, बहुत कुछ बातें समझ में आती है आपकी। लेकिन वो हस्बैंड को पूछती है, आज आप इतने खुश कैसे और इतना बड़ा गुलदस्ता क्यों लेकर आए? हस्बैंड कहता है, आज मैं इतना बड़ा गुलदस्ता इसीलिए लाया हूं क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूं। पत्नी बोलती, वो तो समझ में आ रहा है लेकिन खुशी का कारण क्या है? हस्बैंड कहता है, आज मैं इसीलिए खुश हूं क्योंकि आज मैंने होटल में एक प्लेट तोड़ा। वाई गरी वॉट, अरे नुकसान कराकर आप ऐसे खुश कैसे हो सकते हो? हस्बैंड कहता, एक मिनट शांत रहो, मेरे को पूरी कहानी बताने तो दो, मैं इसीलिए खुश हूं क्योंकि वो प्लेट के टूटने के नुकसान के कारण वो मैनेजर ने मुझे आधा घंटा प्लस और आधा घंटा, एक घंटा खरी खोटी सुनाई, खूब फायरिंग दिया। वाइफ कहती, व्हाट, एक घंटा गाली खाकर आप इतने खुश कैसे हो सकते हो? हस्बैंड कहता, एक मिनट चुप तो रहो, पूरी बात तो बताने दो, मैं इसीलिए खुश हूं क्योंकि मैनेजर ने सजा के रूप में वो पूरे प्लेट के नुकसान की कीमत मेरे पगार में से कट कर दिया है, कट करने वाला है, और तुम्हें पता है वो प्लेट की कीमत कितनी है? वाइफ आश्चर्यचकित होकर के कांपती हुई पूछती, कितने की थी? हस्बैंड कहता, पूरे 5,000 रुपए की। वाइफ कहती है, अरे बेवकूफ इंसान, 5,000 रुपए का नुकसान करा कर तुम गुलदस्ता खरीद के ला रहे हो। हस्बैंड कहता, अरे चुप तो रहो, बोलने तो देती नहीं हो मुझे, मैं इसीलिए खुश हूं क्योंकि मैनेजर ने कहा पूरे 5,000 रुपए एक साथ नहीं कट करने वाले।
हर दिन सिर्फ 50 रुपए ही जाएगा।
इसका मतलब है अगले महीने से तुम्हारे घर के महीने के खर्चे के लिए मैं तुम्हें सिर्फ 4,950 रुपए ही दूंगा।
वाइफ कहती है, अरे क्या करूं इनका,
1 किलो टमाटर यहाँ पर 120 रुपए चल रहा था, इनको क्या पता महंगाई कितना है, घर का खर्चा कैसे चलता है,
अरे 50 रुपए भी कितने महंगे हैं मेरे लिए, ऐसे खुश कैसे हो सकते हो, ऊपर से तुम 200 रुपए का गुलदस्ता भी खर्चा करके आए हो।
हस्बैंड कहता, चुप रहो, लेट मी फिनिश द होल स्टोरी, बोलने तो दो मुझे। अभी है ना आर्थिक मंदी चल रही है, नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, मेरी नौकरी उस होटल में अगले 100 महीने के लिए कंफर्म्ड हो गया है, क्योंकि अगर हर महीने 50-50-50 रुपए कट होगा मतलब 100 महीने लग जाएंगे, लगभग 8 साल कंफर्मेशन लेटर लेकर आ रहा हूं, वो नौकरी से निकालेंगे नहीं 8 साल तक।
भाइयों और बहनों, सकारात्मक चिंतन का अर्थ है जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी लोग हों, कैसी भी घटना घटे, उसमें आपकी गलती हो या ना भी हो, आपकी दृष्टिकोण उस घटना के प्रति कैसे है। वो व्यक्ति रो सकता था, चिल्ला सकता था, गिड़गिड़ा सकता था, गाली दे सकता था, अपने किस्मत को रो सकता था, होटल के मैनेजर को खरी खोटी सुना सकता था, भगवान को उल्टा सुल्टा बोल सकता था। वही घटना थी लेकिन व्यक्ति उसमें क्या पॉजिटिविटी देख रहा है, ये कला जिस व्यक्ति ने सीख ली उसके लिए जीवन के संघर्षों में उभरना बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए एक बार कहानी अच्छी लगी आपको, हाँ तो ताली बजाइए, बहुत अच्छा, मुस्कुराते हुए ताली बजाइए। कल का होमवर्क याद है ना सबको, सब मुस्कुरा रहे हैं ना। एक बार नदी और कुएं के बीच में बहस हो गई, नदी माना रिवर, कुआं माना वेल। नदी ने अकड़ते हुए कुएं को कहा, तेरी क्या औकात है, तू तो एक ही जगह खड़ी रहती है, छोटी सी है, मैं तो इतनी लंबी चौड़ी बहती रहती हूं। कुएं ने बड़े नम्र भाव से, बड़े मीठे बोल से नदी को कहा, बहन बहाव और ठहराव में बहुत अंतर होता है, भटकाव और ठहराव में अंतर होता है। नदी ने अकड़ते हुए पूछा, क्या अंतर है भटकाव और ठहराव में? जो नेगेटिव सोचता है वो बहता रहता है इधर उधर, लेकिन जो ठहरा हुआ है, जो स्थिर है, जो स्टेबल है, वो जो जिसका मन सकारात्मक है। कुआं कहती है, फर्क ये है, भटकाव और ठहराव में फर्क ये है कि तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से बहती हो, इसीलिए बहते बहते खारे पानी में खारी बन जाती हो। मैं नीचे से ऊपर आती हूँ, इसीलिए मीठी हो जाती हूँ। नीचे से जो ऊपर आए, परिस्थिति कैसे भी आपको गिराए, लेकिन आप सदा मीठे रहने से, कुएं का पानी नीचे से ऊपर आता है ना, नदी का पानी तो ऊपर पर्वत से फिर जाकर समुद्र में मिल जाता है। तो भटकाव और ठहराव में बहुत अंतर है। ठहराव वाला व्यक्ति जीवन कैसे भी उसको नीचे गिराए, वो सदा ऊपर की ओर उड़ता रहता अपनी सोच के आधार से। आप भटकाव वाले हैं या ठहराव वाले हैं? जोर से बोलिए। क्या बात है जी, सब तो अच्छे, ताली बजाइए अपने लिए एक बार, बीच बीच में ताली बजाते रहना ताकि आजू बाजू वाले जग जाएं। बहुत अच्छा, ये भी समाज सेवा है तुम्हारे लिए, इतने जोर से प्रोग्राम कर रहे हो और तुम सो रहे हो, जगाना भी हमारा कर्तव्य बनता है। तो सकारात्मक चिंतन, चिंतन का अर्थ है मन, और ये जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। भाइयों और बहनों, प्रश्न उठता है जीवन क्या है? जीवन ही अगर नकारात्मक है, जीवन की परिभाषा ही अगर नकारात्मक है, फिर लाख जतन कर ले हमारी सोच में, हम सकारात्मक नहीं हो पाते हैं।
मुझे याद आता है हम एक बार साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में एक राज्य है जिसको कर्नाटक कहते हैं, वहां हम ऐसी एक सभा में एक सेवा कर रहे थे, तो उनके जो मुख्य अतिथि, जैसे भाई साहब हमारे आज के अतिथि हैं, ऐसे एक स्वामी जी अतिथि थे, उन्होंने गेहुआ वस्त्र पहना हुआ था। और कार्यक्रम के बाद हमारी बहनों ने स्वामी जी को कहा, आप गिरीश भाई जी के साथ रात्रि भोजन डिनर करेंगे क्या? तो स्वामी जी ने तुरंत हाँ कर दिया। तो जब हम गए ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में भोजन कर रहे थे, तो मैं स्वामी जी के साथ बातें कर रहा था। मैंने पूछा, स्वामी जी आप कौन से आश्रम में रहते हैं, आश्रम का नाम क्या है, कितना बड़ा है, सुबह कितने बजे उठते हैं, क्या सेवा करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पूजा पाठ करते हैं, सोते कितने बजे। मेरे मन में थोड़ी उत्सुकता थी उनसे जानने की, क्योंकि मुझे ब्रह्मा कुमारी इसका तो पता है, हम सुबह उठते कितने बजे, सारे दिन की सेवाएं क्या होती है। तो स्वामी जी ने बातों बातों में कहा कि हमारा जो आश्रम है ना, वो 30 एकड़ का है। तो मैंने स्वामी जी को पूछा, स्वामी जी कितने लोग रहते हैं वहां? जैसे ये आपको बड़ा ब्रह्मा कुमारी का आश्रम दिख रहा है ना, यहाँ आप किसी को भी पूछना यहाँ कितने लोग रहते हैं। देखिए आप लोग 4,500 भाई बहने, वहां आनंद सरोवर में कार्यक्रम चल रहा है, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, सभी लोगों का खाना पीना रहना आना जाना व्यवस्था के लिए भाई बहनों की जरूरत होती है। तो मैंने पूछा स्वामी जी को, आपके 30 एकड़ की भूमि में कितने लोग रहते हैं? तो पता है स्वामी जी ने क्या कहा? 3 लोग रहते। मैंने कहा, हे भगवान, इतना बड़ा आश्रम और 3 लोग। मेरे मुख से तुरंत प्रश्न निकल गया, आपे ही निकल गया प्रश्न। मैंने कहा, स्वामी जी खाना कौन बनाता है? क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, ब्रह्मा कुमारीज में, हम खाने पर बहुत महत्व देते हैं। जैसा अन्न वैसा मन, और मन अगर सकारात्मक नहीं हो रहा है तो एक कारण ये हो सकता है कि हमारी अन्न की शुद्धि नहीं है। हम अशुद्ध और नकारात्मक एनर्जी वाला फूड अगर खाएंगे तो उसका भी प्रभाव मन पर होता है। हम तो यहाँ ईश्वर को भोग लगा के पवित्र भोजन स्वीकार करते हैं। तो मैंने स्वामी जी को कहा, स्वामी जी खाना कौन बनाता है? तो पता है स्वामी जी ने क्या कहा? हम खाना नहीं बनाते। मैंने कहा, मतलब खाना खाते तो है ना, तो स्वामी जी ने खाते हैं लेकिन बनाते नहीं है। मैंने कहा, क्यों स्वामी जी? तो स्वामी जी ने 2 चीजों का भेद बताया। भाइयों और बहनों, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक इस बात पर विचार करिए। स्वामी जी ने कहा, एक है लाइफ माना जीवन, और दूसरा है सर्वाइवल माना शरीर चलता रहे, इसकी मृत्यु ना हो। शरीर अर्थ हम जो करते हैं, शरीर की मृत्यु ना हो। मैंने कहा, स्वामी जी प्लीज बताइए दोनों में भेद क्या है। उन्होंने कहा, मनुष्य को सर्वाइवल के लिए शरीर अर्थ जीवन, शरीर अर्थ निर्वाह अर्थ, संसार में किसी भी मनुष्य को सिर्फ 3 चीजें ही चाहिए, चौथा कोई चीज ही नहीं है। ओनली 3 things फॉर सर्वाइवल। मैंने कहा, स्वामी जी बताइए, देखते हैं आपको कितनी ज्यादा ज्ञान और जानकारी है। एक हिंट मैं दे देता हूं। स्वामी जी ने कहा, पहला जो शरीर के निर्वाह अर्थ चाहिए, और वो है रोटी। और मैंने तो उसमें और भी चीजें ऐड कर दी है, पानी भी इंक्लूडेड है, और कोविड के बाद तो मैंने उसमें ऑक्सीजन भी इंक्लूड कर दिया है। ऑक्सीजन से भी कई लोगों को बड़ी तकलीफ हुई थी कोविड के दौरान। तो पहला है रोटी, दूसरा क्या हो सकता है शरीर निर्वाह अर्थ? जोर से बोलिए। हाँ जी, क्या बात है, माताओं को बड़ा भारी वाला विषय है, वो है कपड़ा। इस संसार में एक ही ऐसा प्राणी है जिसको सर्वाइव करने के लिए अपने तन को ढकने की आवश्यकता है। आप में से मैं देख रहा था यहाँ परिसर में बहुत सारे हमारे भारत के सबसे प्रिय दोस्त नेपाल राष्ट्र से हमारे बहुत अति मीठे प्यारे देवी भाई बहने आए हैं। नेपाल वाले भाई बहने हाथ ऊपर उठाइए। वाह, इनके लिए ताली बजाइए जोर से। भारत वाले भाई, बहुत अच्छा। आपके नेपाल राज्य में ठंड के दिनों में कितनी ठंडी पड़ती है?
और हम कितना स्वेटर पहनते हैं, शॉल पहनते हैं, लेकिन क्या कोई जानवर कपड़ा पहनता है? नहीं पहनता। मनुष्य को ही सर्वाइव करने के लिए अपने तन को ढकना और प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। एक है रोटी, दूसरा है कपड़ा, और तीसरा क्या बात है, महान है आप लोग, कितनी ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति है सब जानते हैं। और तीसरा है मकान, वो तो जीव जंतु प्राणी को भी मकान की आवश्यकता पड़ता है गर्मी सर्दी से अपने आप को बचाने के लिए। स्वामी जी ने कहा रोटी कपड़ा मकान सर्वाइवल के लिए, स्वामी जी ने कहा जो व्यक्ति आध्यात्मिक राह पे चल रहा है, सन्यासी है, ऋषि है, मुनि है, पुराने जमाने में जो ऋषि होते थे, हम तीनों का अर्जन मेहनत नहीं करते थे, हमारे लिए ये भीख के तुल्य है। हम चले हिमालय पर्वत की ओर, भूख लगी, गांव में पहुंचे, दरवाजा खटखटाया किसी भी गांव में, किसी भी घर में, और कहा प्रभु के नाम पर हमें कुछ दे दीजिए, भीख के तुल्य। उन्होंने जो रूखी सूखी डाली वो लेकर हम चल दिए। स्वामी जी ने कहा पता है उन्होंने कैसे कपड़े पहने थे, गेहुआ वस्त्र पहना हुआ था, नीचे भाई लोग जैसे रात को लुंगी पहनते हैं वैसे ऊपर उनका शरीर एकदम शॉल जैसा। स्वामी जी ने कहा हम सिला हुआ कपड़ा भी नहीं पहनते। मैंने कहा स्वामी जी आपको क्या तकलीफ है सिले हुए कपड़े से? स्वामी जी ने कहा जो बात उन्होंने कही ना वो मेरे दिल पर आ गई। स्वामी जी ने कहा मृत देह पर सिला हुआ कपड़ा नहीं चढ़ाते, उड़ाते हैं। सारा खेल तो जीते जी उनकी साड़ी देखकर मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा है। आप लोग के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, आप तो बड़े ठहराव वाले लोग हैं, भटकाव वाले तो है ही नहीं, हाथी अपने ऊपर उठाया। सारा खेल तो इस बात का है कि खाना टेस्टी नहीं है और मुझे बर्गर और पिज्जा चाहिए। आप लोग तो कभी भी खाने में नमक पड़ने से कभी गुस्सा नहीं करते, वो तो कल आपने दिखाया भी था। आप तो सब ठहराव वाले हैं, भटकाव वाले तो है ही नहीं, हम तो सकारात्मक लोग हैं। स्वामी जी ने कहा मकान, हम गुफाओं में रहते थे, हम झोपड़ियों में रहते थे, जंगल में। आज तो बहुत ऑर्गेनाइज हो गया, भक्त हमको दान देते हैं, हम बड़े बड़े आश्रम और मंदिर और घर बना लेते हैं। स्वामी जी ने कहा शरीर निर्वा अर्थ रोटी कपड़ा मकान हमारे लिए भीख के तुल्य है। कहते हैं दोस्तों मांगने से मरना भला, मर जाइए लेकिन कभी भीख नहीं मांगना चाहिए। मैंने कहा स्वामी जी जीवन क्या है? स्वामी जी ने कहा जीवन एक अनुभूति है, एक एक्सपीरियंस है, खुशी शांति आनंद। वो वेटर के हाथ से प्लेट गिरा उसका 5,000 का नुकसान, शांति खुशी। सर्वाइवल के लिए पैसा, शायद खाना नहीं खा पाएगा, शायद वो अच्छे कपड़े नहीं खरीद सकता है, चाहे वो रेंट नहीं दे सकता है, वो तो हुआ सर्वाइवल के लिए। जीवन तो एक अनुभूति है, इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ लव पीस हैप्पीनेस। ये तब आता है जब हमने जीवन को ही सकारात्मकता के आधार से देखा है। स्वामी जी ने कहा वो अनुभूति के लिए हम एकांत में बैठते हैं, तपस्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं, परमात्मा के साथ अपने मन बुद्धि को जोड़ते हैं। और उन्होंने कहा गिरीश भाई मुझे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बहुत अच्छी लगती है। मैंने कहा क्यों स्वामी जी? उन्होंने कहा आप लोग सारी दुनिया को ये दो चीजों का भेद बताते हो, और आज की वास्तविकता भाइयों और बहनों पता है क्या है? आज माता पिता गर्व महसूस करते हैं कि मेरा बेटा अपने पैरों में खड़ा है, खुद कमाता है, अपने पैरों अपने मेहनत की कमाई का खाता है, अपने मेहनत की कमाई का पहनता है, और अपनी मेहनत की कमाई के घर में रहता है। अच्छी बात है, लेकिन दुख की बात वो स्वामी जी ने कहा शायद आज सारे विश्व में मनुष्य सुख शांति प्रेम का कटोरा लेके घूम रहे, तुम मुझे प्यार क्यों नहीं करते, तुम मुझसे शांति से क्यों नहीं बात करते, मैंने तुम्हारे लिए कितना। ऐसे खुद कमाता है और उस धन से खुद घर कपड़ा और मकान और खाना खरीद लेता है, लेकिन सुख शांति आनंद मांग रहा है, उस चीज का भिखारी हो गया है। जब खुद आपसे प्रश्न पूछूं, पैसा कमाने की चीज है या ढूंढने की चीज है? पैसा कमाया जाता है, अगर ढूंढना है तो प्लीज बताइए, मैं भी आ जाता हूं ढूंढने के लिए। पैसा कहीं रखा थोड़ी ना है, अपनी मेहनत में जो बुद्धि लगाएगा, जो शक्ति लगाएगा, जो मेहनत करेगा वो धनवान बन जाएगा। प्रश्न, खुशी ढूंढने की चीज है या कमाने की चीज है? और हम खुशी को ढूंढ रहे हैं शादी में, बच्चे में, नौकरी में, नाम में, शान में, कर्म में। खुशी तो एक अनुभूति है, लाइफ इज एन एक्सपीरियंस। क्या हम उस बच्चे को सिखा रहे हैं? पता है हम बच्चे को क्या बता रहे हैं? पढ़, मेहनत कर, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, तब तू खुश होगा। आहा, सर्वाइवल के मार्ग पे उसको बता रहे हैं और कह रहे हैं उसके बाद तो खुश रह पाएगा? कभी नहीं हो सकता है फ्रेंड्स। ये दोनों का भेद बहुत क्लियरली मालूम होना चाहिए। प्लीज नौकरी करिए, धन कमाइए, अच्छा खाना खाइए, अच्छा पहनिए, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बीच बीच में, एकांत में, ना पास्ट को सोच के, ना निश्चित भविष्य को सोचकर चिंता मत करिए। सकारात्मकता के लिए ये दोनों की सत्यताएं और वास्तविकता को समझना बहुत जरूरी है। आपसे एक प्रश्न पूछूं, मृत्यु सत्य है, हाँ या ना? गौतम बुद्धा ने भी शरीर छोड़ा, जीसस क्राइस्ट ने भी शरीर छोड़ा, श्री कृष्ण ने भी शरीर छोड़ा, जिस माँ को मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था आज से करीब 18 साल पहले, उन्होंने भी शरीर छोड़ा, जिस बाबूजी से मैं प्यार करता हूँ वो भी शरीर छोड़ेंगे। यहाँ जो जो लोग बैठे हैं इंक्लूडिंग मी, हम सब भी आज नहीं तो कल शरीर जरूर छोड़ेंगे, हाँ या ना? प्रकृति भी ताली बजा रही है, आप भी थोड़ा ताली बजाइए। क्या बात, वाह। प्रश्न पूछूं, अब एक दिन शरीर छोड़ना ही है जिसको मृत्यु कहते हैं, तो प्रश्न ये है, मनुष्य डरता क्यों है, दुखी क्यों होता है, परेशान क्यों होता है? जीवन अनिश्चित है, कल क्या होगा पता नहीं, अगला पल क्या होगा पता नहीं, अब सोचिए मनुष्य दुखी कैसे होता है, क्योंकि वास्तविकताओं को नहीं जानता है। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी, सत्य ज्ञान के आधार से ही जीवन में सदा सकारात्मक रहा जा सकता है। और सत्यता यह है कि संसार में कोई कभी नहीं मरता, मैं इस शरीर को छोड़कर एक दूसरा शरीर धारण कर लेता हूं, मरता थोड़ी ना हूं। अगर ये विचार सत्यता के आधार पर जीवन के साथ अगर मैंने जोड़ लिया, तो गारंटीड है मैं सामना करूंगा मृत्यु को, लेकिन सकारात्मकता के आधार से, रो के, गिड़गिड़ा के, चिल्ला के, परेशान होकर, दुखी होकर, आप कितना डर लीजिए, कितना रो लीजिए, कितना परेशान हो जाइए, मृत्यु पर जीत नहीं पा सकते। एक दिन तो शरीर छोड़ना ही है, तो फिर वो चिंता करना, परेशान होना तो व्यर्थ है, हाँ या ना? जोर से बोलिए। अब देखो कितना व्यर्थ है, क्योंकि हमने असत्यता के आधार से जीवन को देखा है। दूध को परेशान करिए वो दही बन जाता है, दही को सताइए तो वो मक्खन बन जाता है, मक्खन को और परेशान करिए तो वो घी बन जाता है। दूध, दही, मक्खन और घी लगभग लगभग सबका रंग एक समान होता है, लेकिन चारों का मूल्य अलग हो जाता है। दूध से ज्यादा महंगा दही, दही से ज्यादा महंगा मक्खन, और सबसे ज्यादा कीमती घी की होती है। दूध में एक बूंद नींबू का रस डाल दीजिए या छाछ डाल दीजिए, दही बन जाता है। दही को सताइए तो वो मक्खन बन जाता है, मक्खन को आग में उबालिए तो वो घी बन जाता है। दूध एक दिन तक रहता है, दही शायद 2 या 3 दिन तक रह जाएगा, मक्खन शायद 4 या 5 दिन तक रह जाएगा, लेकिन घी कभी खराब नहीं होता है। वही दूध जो एक दिन में खराब हो जाता है उसी में ना खराब होने वाला घी समाया हुआ है। यही मन, यही आत्मा जो एक विचार से परेशान, दुखी और अशांत हो जाता है, एक बूंद सकारात्मक चिंतन का और उसमें विचार सागर मंथन का फेटिए और उसको योग अग्नि में, तपस्या में उबालिए, बिठाइए, वही मन जो एक सेकंड में, एक घटना में दुखी और परेशान हो रहा है, वो कभी खराब नहीं होगा और सबसे मूल्यवान हो जाएगा। ऐसा मूल्यवान ये आत्मा है उसमें, लेकिन ये क्रिया और प्रक्रिया करना बड़ा आवश्यक है। भाइयों और बहनों, लाइफ इज वेरी ब्यूटिफुल प्रोवाइडेड यू एंड आई स्टार्ट थिंकिंग इट इज ब्यूटिफुल। सोच को परिवर्तन करना है और वही जीवन का एसेंस है। दुख और सुख बाहर नहीं है दोस्तों, वो अंदर की अनुभूति है। किसी ने आपको दो खरी खोटी सुना दी, गुस्सा किया, प्लीज बताइए दुख कहां हो रहा है, अंदर या बाहर? लाइफ हैपेंस विद इन यू, लाइफ डजंट हैपन आउटसाइड ऑफ यू। दुख दर्द अंदर की अनुभूति है, सुख शांति अंदर की अनुभूति है। इसीलिए सदा सकारात्मक रहने का अभ्यास और प्रैक्टिस सत्य ज्ञान के आधार पर, यहां से आप सीख कर जाइए और अपने अपने स्थानों पर जाकर सिखाइए, ठीक है? बस लास्ट एक बात बताता हूं। जिंदगी की एक बहुत सुंदर सी एक पंक्ति है, जिंदगी तुझसे हर कदम पर समझौता क्यों किया जाए। कभी कभी चुप रहना पड़ता है, कभी कभी झुकना पड़ता है, कभी कभी सहन करना पड़ता है। मुझे पता है सामने वाला गलत है, लेकिन फिर भी चुप रहना पड़ता है। जिंदगी तुझसे हर कदम पर समझौता क्यों किया जाए। शौक जिंदगी का है, मगर इतना भी नहीं कि मर मर के जिया जाए। जीना चाहता हूं, लेकिन मर मर के जी रहा हूं। जिंदगी तुझसे हर कदम पर समझौता क्यों किया जाए। शौक जिंदगी का है, मगर इतना भी नहीं कि मरमर के जिया जाए। जब जलेबी की तरह तू उलझ ही रही है ए जिंदगी, तो तुझे क्यों ना चाशनी में डुबो करके ही मजा ले लिया जाए। कोई व्यक्ति हो, कोई परिस्थिति हो, कोई समस्या हो, उसमें भी मीठा मीठा विचार, सबसे पहले अच्छे विचार करिए, पॉजिटिव विचार करिए, और फिर देखिए लाइफ कितना अच्छा हो जाएगा। अपने आप को मेरे पीछे कहिए, मैं सकारात्मक व्यक्तित्व हूं, बोलिए। आपसे ज्यादा आवाज तो बारिश का आ रहा है। 1 2 3 मैं खुश हूं, मेरी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, मेरी पत्नी या पति वो भी बहुत अच्छे हैं। जोर से भगवान बहुत अच्छा है, मेरा भविष्य बहुत सुनहरा है। दोस्तों, जैसा सोचेंगे वैसा हो जाएगा, ठीक है? इस संसार में डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी का एक कारण बताऊं, और वो है अ सेंस ऑफ लैकिंग। मैं अच्छा नहीं हूं, मैं स्मार्ट नहीं दिखता हूं, मैं दुबला पतला हूं, मैं मोटा हूं, मेरे को बुद्धि नहीं है, मैं कभी सफल नहीं हुआ हूं, मेरे को कोई प्यार नहीं करता है, मैं अकेलापन महसूस करता हूं, कोई मुझे समझता नहीं है। यहां से शुरुआत होती है एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। ईश्वर परमात्मा निराकार आकर पहली बात पता है क्या कहता है? मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे, तुम मेरे हो। दुनिया कोई कुछ भी कहे, जब गिरीश भाई ये महसूस करने लगता है कि मैं मीठा हूं, मैं मीठा हूं, मैं मीठा हूं, वो जानकारी देता है। बस 2 मिनट लेता हूं। विदेश में एक रिसर्च किया गया, और उस रिसर्च में होटल में रिसर्च किया गया। होटल में जो होटल मेड होते हैं ना, साफ सफाई करने वाले, बेडशीट चेंज करने वाले, झाड़ू पोछा करने वाले, ऐसे
84 लोगों पर रिसर्च किया गया, और एक ग्रुप जिसको इन्फॉर्म्ड ग्रुप कहा जाता है उनको बताया गया, और एक ग्रुप जिसको कुछ नहीं बताया गया। क्या बताया गया? कि आप जो पूरा दिन काम कर रहे हो, सीढ़ी चढ़ रहे हो, उतर रहे हो, इस कमरे में जा रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, साफ कर रहे हो, ये सब एक्सरसाइज है। अमेरिकन सर्जन एसोसिएशन के रिकमेंडेशन में ये सब बहुत अच्छा एक्सरसाइजेस है, और ये करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, आपका बीपी कम हो जाएगा, आपका मोटापा कम हो जाएगा, आपका हिप और वेस्ट रेशियो कम हो जाएगा। एक ग्रुप को बताया गया, दूसरा ग्रुप को नहीं बताया गया। 4 हफ्ते के बाद, और उनको कहा नहीं कि आपको कुछ अलग से एक्सरसाइज करना है, वो वही काम कर रहे थे। 4 हफ्ते के बाद जिस ग्रुप को बताया गया कि अमेरिकन सर्जन एसोसिएशन का रिकमेंडेशन को आप निभा रहे हो, उनका सचमुच में बीपी कम हो गया, उनका वेट कम हो गया, उनका क्या बोलते हैं, कई लोगों का जो वेस्ट हिप रेशियो है वो कम हो गया। उन्होंने अलग सा कुछ नहीं किया, बस उनको बताया गया कि तुम जो कर रहे हो वो एक्सरसाइज ही है। 10,000 steps आप चल रहे हो, ये एक्सरसाइज है। आप ऐसे ऐसे दिखाया गया उनको, ऐसे करना मान ला, ये जॉइंट के लिए अच्छा है। आप झुक करके झाड़ू लगा रहे हो, वो हिप के जो मसल्स है वो काम कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारीज की सबसे अच्छी बात, स्वयं परमात्मा जिसने सृष्टि रची वो आकर मुझे बताता है कि तुम कौन हो। मैं इन्फॉर्म्ड ग्रुप बन गया। तुम अच्छे हो, भूल गए हो स्वयं को, नहीं जानते हो अपने अंदर क्या असीम शक्ति है आपके अंदर। और उस परमात्मा शिव बाबा ने मुझे बड़े प्यार, हर दिन मीठे बच्चे तुम मेरे समान हो, मास्टर सर्वशक्तिमान हो। मैं वही कर रहा हूं, आपको कुछ नहीं और करना है, आपको वाइट ड्रेस भी नहीं पहनना, आपको वही नौकरी करनी है, वही समाज सेवा करना, वही शहर में रहना, वही परिवार के साथ रहना, वही लोगों के बीच रहना है। लेकिन अब आपका शरीर और आपका मन और आपका जीवन और आपका भाग्य में परिवर्तन आ जाएगा। अलग से कुछ थोड़ी ना करना है, बस वो उस बोध में रहिए, उस अवेयरनेस में रहिए कि मैं जो कर रहा हूं वो ईश्वरीय कार्य के लिए मददगार हूं, सकारात्मक हूं, अच्छा हूं, भगवान मुझसे खुश है। यही तो है पॉजिटिव थिंकिंग। और ये जिसने कर लिया, आपको यहां पर लगेगा कि हाँ इन लोग बाहर का नहीं खाते हैं, शादी नहीं करते हैं, पवित्र रहते हैं, छोड़ो अभी तो आ गए हैं, अगली बार से नहीं आएंगे, बहुत प्रॉब्लम है। वो एक डिसिप्लिन है। थोड़ा मुस्कुराइए तो क्या सोचेंगे, मैं जो हूं जैसा हूं ईश्वर की बहुत श्रेष्ठ रचना हूं। फील तो करिए, वही वो एक हेलो
भाई साहब आ गया।
ओके, ये भी परमात्मा का मैसेज है, एक मिनट साइलेंस में अच्छा सोचिए अपने बारे में, ठीक है? चलिए, थैंक यू, ओम शांति, जोर से ताली बजाइए। और ये वचन लीजिए, कुछ भी हो जाए, जिंदगी कैसे भी घुमाए, मुझे चाशनी में डुबोकर मीठा बनकर जीना है, पॉजिटिव रहना। आप सब से मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं यही आशा करता हूँ और आप सबके प्रति ये शुभ भावना रखता हूँ, आप सदा सकारात्मक रहेंगे, सदा खुश रहेंगे, सदा प्रसन्नचित रहेंगे, आप अपने परिवार सहित समाज सहित बहुत खुश रहेंगे, समृद्ध रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। इन शुभ आशाओं के साथ थैंक यू, ओम शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद राता गिरीश जी, आपने बताया कि सत्य ज्ञान से ही सदा सकारात्मक रहा जा सकता है। एक बूंद सकारात्मक चिंतन की हर रोज अपने अंदर डालें और सोच को परिवर्तन करें तो हमारी लाइफ जो है वो इसेंस से भरपूर हो जाएगी। इसलिए भाई साहब के लिए जोरदार तालियां बजा करके भाई साहब का धन्यवाद करेंगे। और अब एक बहुत सुंदर नृत्य लेकर के आ रही है कुमारी रोशनी अमरावती से। आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं नया अंत है। कुमारी रोशनी
सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से।
मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से।
स्वागत और सत्कार का मौसम स्वागत और सत्कार का मौसम महका चिर बसंत है।
आगमन से आपके आनंद ही आनंद है।
शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी रोशनी का। रोशनी बहन छतरपुर से हैं। अमरावती से नहीं, छत्रपुर से। और अब मेरा निवेदन है आज के हमारे माननीय अतिथि प्रोफेसर दिनेश चहल जी, आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ टीचिंग एजुकेशन स्कूल सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा महेंद्रगढ़, और आपने देश विदेश में 300 से अधिक सेमिनार में रिसोर्स पर्सन के रूप में भाग लिया, नशा मुक्ति रक्तदान शिविर और 100 से अधिक सोशल अवेयरनेस कैंपों का आयोजन आपने किया, और आज आप अपना बहुत सुंदर विषय लेकर के हमारे बीच में उपस्थित हुए। मेरा निवेदन है भाई साहब से।
माफी चाहूंगा सुनील जी से, क्योंकि मैं हमेशा ही गिरी जी, मैं इंट्रोडक्शन में विश्वास नहीं रखता, इंट्रैक्शन में ज्यादा विश्वास रखता हूं, तो मैं इसलिए माफी चाहूंगा। और आज आपने कहा कि 15 मिनट है, अब 15 मिनट में इतनों का करेक्टर बदलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी देखते हैं। दीदी शांता बहन श्री राम की बहन भी थी, गिरीश भाई जो पहाड़ के भगवान है, संतोष बहन जिसके लिए सारा कुछ हम संतुष्टि तृप्ति प्रसन्नता खुशी सबके लिए कर रहे हैं, और सुनील भाई हमारे, मैं कहूँ गहरा जो कृष्ण का नीला रंग उसके, और शांति वन में शांति की तलाश में डायमंड हॉल में भारत व भारत के मैत्री देश से आए नायाब कोहिनूर हीरों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके मैं नाम नहीं जानता, उनको हृदय से नमन करता हूँ। ओम शांति के साथ अपनी बात शुरू करता हूँ। आने का मकसद क्या था आप पूछ रहे थे मेरे से, मेरे पिताजी मैं जब छोटा सा था यहाँ लेकर के आए थे, तो मैं सोच रहा था, यहाँ एक साथी ने पूछा क्या करने आए हो, मैंने उसको कहा उलझी हुई उलझन को सुलझाने आया हूँ, कुछ प्रश्न मन जीवन मृत्यु कुछ प्रश्न दिल में है उनको पूछने आया हूँ, पला बढ़ा इन्हीं ब्रह्मा कुमारी के संस्कारों में, उन्हीं संस्कारों का कर्ज अदा करने आया हूँ, उन्हीं संस्कारों का कर्ज अदा करने आया हूँ। कहानी बहुत सुनाई गिरीश भाई ने, एक छोटी सी कहानी से बात शुरू करूंगा। गुरु नानक देव किसी गांव के बाहर, अगले दिन प्रवचन था, गांव के बाहर रुके हुए थे, और गांव के लोग गिलास गिलास दूध का लाते हैं, गुरु नानक देव जी 4 पंखुड़ियां 5 पंखुड़ियां गुलाब की डाल के वापस कर देते हैं। गुरु के शिष्यों ने पूछा गुरु जी मतलब समझ नहीं आया, उसने कहा ये आगे जिस गांव में हम जाएंगे वो ज्ञानियों का गांव है, मैंने उस दूध में 4 पंखुड़ियां डाली, उससे दूध ना छलका ना कुछ उसमें असर हुआ, मेरा तो यही है इस पंखुड़ियों की तरह मैं कुछ बातें आपसे साझी करूंगा, वो लेवल तो नहीं है गुरु नानक देव जी का, आशा है आप स्वीकार कीजिएगा, क्योंकि और पेशेंस के साथ, क्योंकि बड़ा मुश्किल है गिरीश भाई आपके बाद बोलना, लेकिन हम कोशिश करते हैं, गन्ना का रस निकाल देते हैं उसके बाद नींबू और पुदीना डालते हैं, तो कोशिश करेंगे, पेशेंस के साथ सुनिएगा, पेशेंट ना बनिएगा, कि लाख दलदल हो पांव बनाए रखिए, लाख दलदल हो पांव बनाए रखिए, हाथ खाली हो तो भी उठाए रखिए, कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखिए, बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखिए। पॉजिटिविटी द असेंस ऑफ लाइफ, यस सकारात्मकता के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक छोटी सी कहानी, एक नकारात्मकता और सकारात्मकता क्या है, हम आप लोग समाज में काम करते हैं, समाज सेवी हैं, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं आपके करने से कुछ नहीं होगा, समाज तो ऐसे ही रहेगा, उनका सोचना नकारात्मक है, लेकिन जो ब्रह्मा कुमारी और इन जैसे लोग जो कर रहे हैं वो सकारात्मक काम है। तो जब एक पास के जंगल में आग लगी, एक छोटी सी चिड़िया दो दो बूंद करके पानी उस पर डाल रही थी आग पे, नकारात्मक कौवे ने कहा चिड़िया बहन जो तू ये कर रही है तेरे करने से कौन सा जंगल की आग बुझ पाएगी, चिड़िया का जवाब हम सबके लिए सुनने वाला था, चिड़िया ने कहा कौवे भाई मानती हूँ जानती हूँ इन चोंच की बूंद से आग नहीं बुझ पाएगी, लेकिन एक बात याद रखना जब भी जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं आग बुझाने वालों में आएगा। तो ब्रह्म कुमारी सेंटर करते क्या है, मैं सोच रहा था करते क्या है, ये हमें आध्यात्मिक संस्कारों से जोड़ते हैं। हम आपाधापी में सोशल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ सारी चीज जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आध्यात्मिकता का छींटा जैसे आपने कहा था वो लग जाए तो हमारी सोच हमारा काम हमारी सकारात्मकता वो अलग होगी। एक गांव में आग लगी, सारे लोग भाग गए आग लगी, एक अंधा और लंगड़ा जलने पे मजबूर थे। उन दोनों ने सलाह बनाई कि मैं तेरी आंखें बनूंगा, तू मेरी टांगे बन जा। दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं और बच जाते हैं, कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो इस कहानी का मतलब क्या है? आज इस आधुनिक संसार की भी जरूरत है, जहां आप साइंस की बात करते हो, आज इस आध्यात्मिकता की भी जरूरत है जिसको हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। उस अंधा क्या है, लंगड़ा क्या है? अंधा हमारा कहीं ना कहीं साइंस हो गया है और कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता पीछे छूट गई है। हमें साइंस या मॉडर्निटी को भी साथ लेना है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी को भी साथ रखना है, जब हम आगे बढ़ पाएंगे। और बीके वाले करते क्या है? क्योंकि सारी दुनिया जो है विकल्पों पे टिकी हुई है। अभी आप बात कर रहे थे स्वर्ग नरक, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति कहती है स्वर्ग नरक के बाद भी मोक्ष। हम सुख दुख की बात करते हैं, वहां पे हम कहते हैं कल्याण। हम मन शरीर की बात वैश्य वाले करते हैं, हम उससे आगे आत्मा की बात करते हैं। हम सुख दुख के साथ आनंद की बात करते हैं, हम कहीं ना कहीं रोग और योग की भोग की बात करते हैं, हमारी संस्कृति योग की भी बात करती है। तो कहीं ना कहीं उस बीके का जो मंत्र आपने दिया कि शांत रहें, शांत रखें, खुश रहे और खुश रखें, क्योंकि हमारी जो पर्सनल लाइफ है उसमें चार डायमेंशन होती है। फिजिकल बॉडी है हमारी, हमारा एक मेंटल जिसको हम मन कहते हैं, इंटेलेक्चुअल पार्ट है, और चौथा हमारा स्पिरिचुअल पार्ट है। ये ठीक उसी तरह से है, हमारी फिजिकल बॉडी अगर मैं कहूं तो ये हमारा मोबाइल है। इस मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम कह सकते हैं वो माइंड है, और स्पिरिचुअलिटी क्या है, उसका सिम कार्ड है। सिम कार्ड के बिना मोबाइल नहीं चल सकता, स्पिरिचुअलिटी के बिना जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। उसको हमें डालना होगा, उसको मानना होगा। और जीवन के तो चार पहिए ही है, गाड़ी का जैसे चार पहिए नहीं स्टेयरिंग पे चलती है, तो उन चार पहिए क्या है जो मैंने बताया, चार पहिए हैं, लेकिन स्टेयरिंग तो स्पिरिचुअलिटी का चाहिएगा, आध्यात्मिकता का चाहिएगा, तब कहीं मन शांत होगा। सारे उपद्रव मन के हैं। तो इस दुनियादारी में सर, हमने जब कोरोना आया, पहले हम वर्क फॉर होम करते थे, फिर हमने वर्क फ्रॉम होम भी किया, लेकिन मेरी गुजारिश ये है वर्क फॉर होम भी करिए, वर्क फ्रॉम होम भी करिए, लेकिन वर्क फॉर पीस भी करिए। अगर पीस के लिए काम नहीं किया, हम पीसेज में बटेंगे, हमारा जो मन है वो अशांत होगा, फिर इसकी पॉजिटिविटी की बार बार बात करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना है? एक वॉच 24 घड़ी लगी हुई है वहां पे, 15-20 मिनट दिए हैं, तो घड़ी में 24 घंटे, तो एक वॉच 24 का मंत्र आपके साथ साझा कर रहा हूं, आपको उससे समझ आ जाएगा। हम पांच, हमारा शरीर और पूरा ब्रह्मांड पांच तत्वों से बना है। पांच तत्व, पांच ज्ञानेन्द्रिया, पांच कर्मेंद्रिया, पांच विषय और चार अंतःकरण, ये 24 है पूरा। कहीं ना कहीं इन सब का राजा मन है, जैसा आप कह रहे थे, अच्छा भी वही है और बुरा भी वहीं पे है। तो हम ब्रह्म कुमारी में आकर के क्या सीखते हैं, उस मन पे काम कैसे करें। और ये लोग यही नहीं, भारत में नहीं, मैं नेपाल में था पिछले बार, मैं नेपाल वाले साथियों को बता रहा हूं, मैं थम्मल में रुका हुआ था, थम्मल में ही आपका बीके का सेंटर था, तो कितना अच्छा, ये तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, बहुत बार यूरोपियन कंट्री में जाता हूं, वहां भी सेंटर्स है हमारे, तो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हमें जितने भी सोशल वर्कर या सोशल समाज सेवी हैं, वो भी हम इनके साथ मिले, और कहीं ना कहीं अगर हम इनका साथ निभाएंगे तो ये कह सकेंगे कि खोल दो पंख मेरे कहता हूं, खोल दो पंख मेरे मैं कहता हूं परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमां बाकी है। तो पूरे संसार में लोगों को बदलना है, ये ब्रह्म कुमारी भाई बहने कर रहे हैं, हमें भी इनका साथ देना है। अब समाज सेवा के लिए करें क्या हम लोग, सवाल ये उठता है, इस पॉजिटिविटी के लिए, समाज सेवा के लिए हम करें क्या। उसके लिए मैं चार पांच छोटे छोटे मंत्र हैं। एक तो भरोसा खुद पे और खुदा पे, ऊपर वाले पे, दोनों पे भरोसा। दूसरा, हम जितना मदद कर पाए किसी की। और तीसरा सबसे जरूरी है, शांत रह करके और अहंकार रहित और अपेक्षा नहीं, क्योंकि जहां अपेक्षा करते ना, मेरे को ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, उम्मीद से दिक्कत आती है, और जब उम्मीद टूटती है फिर हमें दुख होते हैं। और एक कहानी मैं बताता हूं, बादशाह कहीं जा रहे थे और एक बूढ़ा आदमी सर्दी में ठिठुर रहा था। बादशाह ने देखा इसकी हालत खराब है, मैं तुम्हारे को एक कंबल दूंगा, और बादशाह ने अपने मंत्री को कहा इसको कंबल दो। फिर जैसे हमारे समाज में चलता है, नोट शीट चलाएंगे, फाइल चलेगी, वो होगा, ऊपर से आएगी, नीचे से परमिशन आएगी, तो वो फाइल चली। जब तक 3-4 दिन में फाइल चली, वो बूढ़ा आदमी बुजुर्ग मर चुका था ठंड से। उसके एक चिट्ठी लिखी कि बादशाह मैं सर्दी को तो झेल जाता, मैं सर्दी से नहीं मरा, लेकिन तुमने जो आश्वासन दिया, तुमने जो भरोसा गलत दिया, उसके कारण मैं मरा हूँ। तो कहीं ना कहीं हम उम्मीद ना लगाएं समाज सेवा करके। आज हम उम्मीद करते हैं पद की, प्रतिष्ठा की, नाम की, फेम की, तो वो प्रसिद्धि ना रहे। तो कहीं ना कहीं जैसा आपने कहा था कि हम संतुलन के साथ कि कुछ इस तरह से मैंने जिंदगी को आसान कर लिया, कुछ इस तरह से मैंने जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया, किसी को माफ कर दिया। और एक आपका संवाद, कम्युनिकेशन बड़ा जरूरी है, उस पर नहीं बोलेंगे ज्यादा। और एक जब भी हम समाज सेवा करते, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, उसमें दो तीन चीजें का ध्यान रखिए, प्रीति प्यार प्रेम, रीति नीति। और आपकी अगर ये प्रीति रीति नीति संतुलित है तो हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकते हैं। और उसके साथ साथ ऐसा जो मैं कहूं संगति, सबसे बड़ा जो हमारा एक पॉजिटिव फैक्टर है कि मेरे साथ अच्छे लोग हैं, मेरी नकारात्मकता क्या है, मेरे साथ बुरे लोग हैं। एक चित्रकार था, उसको कहा गया कि आप एक भगवान जैसी सुंदर मूर्ति बनाइए। वो कई दिन भटका, उसको एक जंगल में गाय चराने वाला लड़का मिला, 12-13 साल का लड़का रहा होगा, उसका गाय चराने वाले का प्रकृति के साथ उसने इतना सुंदर चित्र बनाया, बहुत बिकाऊ, भगवान की तरह कहते हैं। उसके बाद 15-16 साल के बाद उसको कहा गया कि तू अब संसार बदल रहा है, शैतान का भी चित्र बनाओ। तो उसको ढूंढता रहा, कहीं नहीं मिला, उसने जेलर के पास गया, जेल में वो कहता तू तुम्हारा खूंखार कैदी हो ना, सबसे ज्यादा या खूंखार आदमी हो, उससे मेरे को मिलवाइए। उसको मिलवाया गया, उसके बिखरे बाल, आंखें निकली हुई और जो बुरा चेहरा, जो भी आप सोच सकते हो, वो सारा। तो उसने चित्र बनाने लगा, जब उस जिसका चित्र बना रहा था उसने कहा आपने मेरे को पहचाना नहीं, कहता नहीं, कहता मैं वही 12-13 साल वाला लड़का हूँ, उस टाइम मेरी संगति गलत हुई, इसके कारण मैं आज हूँ। तो संगति मैटर करती है, मेरा किस परिवार में जन्म हुआ मैं भगवान को दोष दे देता हूँ, मैं किससे शादी करूंगा, मेरी अच्छी लड़की से हुई लड़के से हुई, मैं माँ बाप को दोष दे देता हूँ, लेकिन मेरे साथ कौन लोग रहेंगे उसके लिए माँ बाप भी नहीं है और भगवान भी जिम्मेवार नहीं है। तो संगति इम्पोर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं हम संगति के बारे में सोचे। और एक जिसको हम कहते हैं पैशन, पेशेंस मैंने कहा था, उसके साथ पैशन भी हो, पॉसिबिलिटी और पोटेंशियल। अगर हम ये ढूंढ पाएंगे अपनी टीम में या अपनी टीम में जगा पाएंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। और कामयाबी के सफर में धूप बहुत काम आई, अनुभव की बात कर रहा हूं, कामयाबी के सफर में धूप बहुत काम आई, छांव होती अगर तो कब के सो गए होते। दैट मीन्स जो परेशानियां आएंगी वो हमें मजबूत बनाएंगी, पॉजिटिव बनाएंगी। तो सबसे जरूरी जब हम समाज सेवा करते हैं आपके आपस में रिश्ते, रिलेशन, क्योंकि आज हम देखते हैं गिरीश जी रिश्तों में जीवन होना चाहिए। हम सिर्फ संपर्क, संपर्क का मतलब क्या है, मेरा फायदा होगा तो मैं आपसे कॉन्टेक्ट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। मैं संपर्क की बात नहीं कर रहा हूं, मैं संबंध की बात कर रहा हूं। संपर्क क्या होता है, आप पानी में तेल मिला दीजिए अलग अलग दिखेगा। संबंध क्या होता है, दूध में पानी मिला दो और पानी में दूध मिला दो। तो हमारे आदमियों से, हमारे समाज से संबंध इस तरह से होने चाहिए, तब हम कहीं ना कहीं जो आज रिश्ते हमारे रिसने लगे हैं, रिश्तों में रस नहीं है, तो रिश्ते बनेंगे तो रास्ता निकलेगा, अपने लिए भी, समाज के लिए भी, और पूरे राष्ट्र के लिए भी, और पूरी मानवता के लिए भी। और संगठन शक्ति, जब हम संघ चलते हैं उसको संगठन बोलते हैं, संघ किसी काम को करने के लिए जिसका गठन किया जाता है उसको संगठन शक्ति। तो आप यहाँ इंडिया में ब्रह्म कुमारी इतना अच्छा काम करते, बाहर कैसे काम करते हैं, ये संगठन का ही दम है। तो संगठन शक्ति अगर होगी तो हम धागा नहीं चादर बन सकते हैं, और संगठन होगी तो बूंद से सागर बन सकते हैं, ईंट से इमारत बन सकते हैं, और मैं से हम बन सकते हैं, और सबसे बड़े आत्मा से परमात्मा का मिलन हो सकता है। अगर हम संगठन में या संगठन शक्ति के साथ काम करेंगे तो हमें समाज सेवा के लिए अकेले मेडल्स वाले लोग नहीं कि फर्स्ट आते पढ़ाई में, वो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ संस्कार भी जरूरी है। क्योंकि समाज अकेले मेडल वालों से नहीं चलता, समाज इन मॉडल से चलता है। समाज को दिशा देने वाले रोल मॉडल आप होंगे जो समाज की सेवा करते हैं। क्योंकि आज हम साइंस टेक्नोलॉजी में बोलते हैं इंटरनेट का जमाना है, मैं मानता हूं, लेकिन इनर नेट पे भी काम करना होगा। डिजिटल का जमाना है लेकिन डिवाइन पावर को भी जगाना होगा। तो जब हम इन ब्रह्मा कुमारी के साथ काम करेंगे तो हमारा काम लोक हित में भी होगा, लोक संग्रह के लिए भी होगा, अपने लिए भी होगा। क्योंकि अपने लिए तो पशु भी क्या जीता है, अपने लिए पशु भी जीता नहीं, अपने लिए पशु ही जीता है। राइट, पीछे तक मेरी आवाज आ रही है? यस, चलिए मैं देखता हूँ, चेक कर लेता हूँ, मैं पांच गिनूंगा, आपने पांच पे क्लैप करनी है, दो दो हाथ वाले जो भी लोग हैं मैं सबसे गुजारिश करूंगा जो दो दो हाथ वाले सारे करेंगे, मैं पांच काउंट करूंगा फिर आपने क्लैप करनी है, आई विल काउंट वन टू फाइव देन यू हैव टू क्लैप। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक दो तीन। मैंने जानबूझ के तीन बार कहा कि पांच पे क्लैप करनी है, लेकिन सर करते क्या है, ये आदमी ऐसे ही है, एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, कहने का मतलब यह है आप दो दिन में तीन दिन में जो भी सीखो, ताली तीन पे बजाओ पांच से बजाओ उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तीन दिन में चार दिन में जो भी यहां से सीख के जाओ उसको जीवन में भी अपनाओ, तब कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम का मकसद पूरा होगा और आपके सत्कर्म स्वभाव बन जाए, समाज सेवा के लिए आपके सत्कर्म ही आपका स्वभाव बन जाए। ये मैं कहीं से नहीं कह रहा, अपने सारी चीजें भगवद गीता से मैं पढ़ता हूँ, ओढ़ता हूँ, बिछाता हूँ, सुनता हूँ, सुनाता हूँ। तो भगवद गीता में सिर्फ दूसरा ही चैप्टर जो समाज सेवी के लिए सुनने वाला है, और उससे आगे अगर गीता पढ़ोगे उसमें भी तीन ही वर्ड है, कई बार ये टाइम नहीं देते, मैं जल्दी जल्दी पूरा करता हूँ, भगवद गीता में 700 श्लोक है। सुनील जी देख रहे, कहते 70 श्लोक तो दूसरे में भी हैं, मैं दूसरे 70 श्लोक की बात भी नहीं कर रहा, तीन ही वर्ड हैं जो आपके 31 से लेके 38 तक। स्वधर्म, मेरी एज अ पेरेंट्स एज अ समाज सेवी ड्यूटीज क्या है। दूसरा वर्ड है 39 से लेके 53 तक, जिसको हम बोलते हैं निष्काम कर्म, मेरे करने से क्या फायदा होगा, वो वाला निष्काम कर्म। और तीसरा वर्ड अगर मैं कहूं गीता एक वर्ड में, जब मेरे को बोलनी होती है मैं एक ही वर्ड बोलता हूं, उसी वर्ड पे आधा पौना घंटा बोलता हूं, दैट इज स्थित प्रज्ञा। अगले 70 तक श्लोक सारे के सारे स्थित प्रज्ञा पे है, और दूसरे चैप्टर के बाद अगर गीता पे जाओगे सारी की सारी एक्सप्लेनेशन, एक्सपेंशन, एक्सटेंशन उसी वर्ड की है, वो स्थित प्रज्ञा कैसे चलता है, बोलता है, काम करता है, उसी वर्ड पे सारी बात है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम कहीं ना कहीं वो सत्कर्म हमारा स्वभाव बन जाए, और ब्रह्म कुमारी जो एक तरह से मीडिएटर बना है, क्योंकि मैरिज करते हैं मीडिएटर होते हैं, लेकिन मैरिज होते हुए मीडिएटर निकल जाते हैं, तो इसी तरह से ब्रह्म कुमारी हम सबके लिए एक मीडिएटर बना है, इस आत्मा को उस परमात्मा से मिलाने के लिए। तो हम इस ब्रह्म कुमारी से जुड़ के अपने आप को सौभाग्यशाली माने, और मेरी कामना है मेरी वाणी में अगर कहीं दोष रह गया हो, तो विचारों में भ्रम आ गया हो, ऐसी बात कह दी हो जो आपके और आपकी प्रोग्राम की गरिमा के अनुकूल ना हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और प्रत्येक जन जन का कण कण का मान करता हूँ, जो जिन्होंने ये पावर अवसर दिया वह मेरी वाणी को मान दिया। मेरे को आपके आनंद का तो पता नहीं, लेकिन मैं आपकी उपस्थिति से सरोबार हूँ, आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और मैं कहूँगा कि सदा खुश रहें। ताली नहीं बजानी, ताली मैं ही बजवा के जाऊंगा, जो बजाए संगठन की ताली मैं बताता हूँ क्या, कि सदा खुश रहें आप, ये दुआ है हमारी, महकते रहे आप, ये गुजारिश है हमारी, महकते ये सारा जग आपके काम से। इस अवसर पर ब्रह्मा बाबा से प्रार्थना है हमारी, ब्रह्मा बाबा से प्रार्थना है हमारी, मेरे जीवन में जो भी दुख आए आपके जीवन में एक भी ना आए, ब्रह्मा बाबा से मैं प्रार्थना करूंगा, मेरे जीवन में जो सुख आए उससे भी ज्यादा सुख, खुशियां, शांति आपको मिले, इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं कामनाओं के साथ मैं कहूंगा आप सबको, हम ताली बजाएंगे, लेकिन संगठन की ताली बजाएंगे। अपना लेफ्ट हैंड निकालिए, जो दो दो हाथ वाले हैं प्लीज, सारे देखते हैं कितने हैं दो दो हाथ वाले। मैं अकेला हूं, अकेले ब्रह्म कुमारी वाले हैं, मैं कहता हूं मैं अकेला हूं, अकेले से ताली बजाइए, बज नहीं, मजा नहीं आ, चलो मैं और ये आगे वाले दो लोग मिलते हैं, चलो मैं आप जितने इस हॉल में बैठे तीन लोग मिलते हैं, ताली एक से बजी, दो से भी, लेकिन मजा कब आएगा, जब सारे समाज को मिला करके कोशिश कीजिए। ये है संगठन की ताकत, ये है टीम की ताकत। ताली एक से बजी, दो से भी बजी, लेकिन मजा कब आया, जब दोनों हाथ मिले। यही चीज समाज सेवा में है कि हम सकारात्मकता के साथ जब मिलकर के काम करते हैं, समाज को भी आगे उठाएंगे, राष्ट्र को भी आगे लेकर के जाएंगे, मानवता को भी आगे लेकर के जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, जैसे आपने ताली बनाई थी, अपने साथी के साथ हाथ मिलाइए, साथ में जो दो दो हाथ वाले प्लीज हाथ मिलाइए। मैं ये मान के चलूं दो दो हाथ नहीं है जो नहीं कर रहे, हाँ ऊपर करिए, जो बहुत अच्छा किया हुआ हमारे सीनियर साथ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो उधर की फोटो लीजिए, मेरी फोटो जरूर नहीं है, तो मैं जो कहूं मेरे पीछे पीछे रिपीट करना, आपने मैं जो बोलूं पीछे रिपीट करना, श्वास श्वास में विश्वास जगाएंगे, मरे श्वास के साथ बोल रहे हैं इतने लोग, श्वास श्वास में विश्वास जगाएंगे, हम सब मिलकर ब्रह्मा बाबा के सपने को सच कर दिखाएंगे। अब आपने हाथ दिया है, साथ भी देना। विद दीज वर्ड्स आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार बहन जी भ्राताश्री और पूरे मैं कहूंगा ब्रह्म कुमारी परिवार का ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने बड़े विस्तार से आज के विषय पर चर्चा की। अब इसको स्थायित्व देने के लिए मेरा निवेदन है परम आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी संतोष बहन फ्रॉम जम्मू, आप एक्टिव मेंबर हैं सोशल सर्विस विंग के, आपने 1993 से ज्ञान लिया और 95 से आप समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तमान समय आप बिलावर आश्रम पर अपनी आध्यात्मिक सेवा के साथ साथ ही समाज सेवा प्रभाग की सेवाएं भी आप देते रहते हैं और अब हम सभी को मेडिटेशन करवाएंगी आदरणीय संतोष बहन जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परम प्रिय परम पिता परमात्मा की अति प्रिय संतान, सम्मान्य मंच, परम श्रद्धेय दीदी जी, हमारे आज के मुख्य अतिथिगण, सभा में भिन्न भिन्न स्थानों से पधारे हुए हमारे सभी समाज से भी भाई तथा बहनें, आप सबको मेरा नुमा शाम का वंदन प्रणाम, ओम शांति। आज हम बात कर रहे हैं पॉजिटिविटी की, सकारात्मकता। तो सकारात्मकता हमारे अंदर कैसे आए, उसके लिए हम सब जानते ही हैं, यह जो हमारा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है, यहाँ 7 डेज कोर्स दिया जाता है और 7 डेज कोर्स के अंदर सबसे पहले हमारा फर्स्ट लेसन है स्वयं की पहचान। हमारा जो टॉपिक है मेडिटेशन का, तो सबसे पहले हमने 4 बातों के बारे में जानना है। आपने मॉर्निंग को शायद फर्स्ट लेसन किया होगा, शायद कईयों ने नहीं भी किया होगा, तो मैं 4 बातें आपको बताऊंगी। जैसे कि सपोज हम बचपन में स्कूल में गए हैं, हम सब पढ़े हैं स्कूल में, जब हम स्कूल में जाते थे तो सबसे पहले हम क्या करते थे, प्रेयर करते थे और फिर हम अपनी क्लासेस में जाते स्टडी के लिए। तो सबसे पहले जब हम स्कूल बचपन में गए तो हमने अपनी पढ़ाई कहाँ से शुरू की, ABCD से, अ आ ए सी, जो हमारी वर्णमाला है। तो यहाँ भी इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो हमारी पढ़ाई की शुरुआत है वो ABCD से ही है। ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, भगवान परमात्मा ईश्वर, हम उसको प्यार से बाबा कहते हैं, क्योंकि जैसे घर में एक बुजुर्ग होता है तो उसको बाजी कहा जाता है, ऐसे ही परमपिता परमात्मा स्वयं भगवान हम सब आत्माओं के ऑलमाइटी अथॉरिटी गार्ड शिवा हैं, जिसका चिन्ह आप देख रहे हैं वो एक ज्योति बिंदु। उस ज्योति बिंदु को कैसे जाने, तो मंदिरों के अंदर उसका शिवलिंग बना दिया। और सी फॉर सर्कल, पूरी सृष्टि का ज्ञान, आदि मध्यांत का ज्ञान, सतयुग में कितनी श्रेष्ठ आत्माएं थी लेकिन जन्म लेते लेते आज हम गिरावट में आ गई हैं, आज हमारे अंदर इतनी नेगेटिविटी आ गई है। आज हम देखते हैं, दुख होता है जब हम समाज में जाते हैं सेवा करने के लिए, जहाँ हम आए दिन न्यूज सुनते हैं, किसी से सुनते हैं किसी का बच्चा जा रहा है और स्ट्रेस लाइफ जी रहा है और जिससे वो सुसाइड कर लेता है, और उसके लिए हमें आध्यात्मिकता की बहुत जरूरत है। आध्यात्मिकता एक ऐसी सुगंध है जो हमारे जीवन को एक जैसे पुष्प एक सुगंध देता है, ऐसे आध्यात्मिकता भी एक सुगंध देती है जिससे हमारा जीवन प्रफुल्लित हो जाता है, जो इस ईश्वर विश्वविद्यालय में सिखलाया जाता है। डी फॉर ड्रामा, ड्रामा के अंदर हम सब एक्टर हैं, हर एक एक्टर को हम सबको अलग अलग पार्ट मिला है और उस पार्ट को हमने अपने तरीके से अदा करना है। हमने ब्रदर एंड सिस्टर को नहीं देखना है, हमने देखना है उस सुप्रीम सोल गॉड शिवा जो हमारे परमपिता परमात्मा शिव हैं। तो आइए कुछ मिनट हम उस यात्रा की ओर चलें, उस अनुभूति की ओर चलें। सबसे पहले हम स्वयं को देखें कि मैं कौन, मैं एक शुद्ध पवित्र शांत स्वरूप आत्मा हूं। मुझ आत्मा का निवास इस शरीर के अंदर दोनों आंखों के मध्य मस्तक में विराजमान। अनुभव कीजिए मैं शुद्ध पवित्र आत्मा, परमपिता परमात्मा की संतान, जो मैं श्रेष्ठ आत्मा थी। जन्म लेते लेते मेरे अंदर इतनी नकारात्मकता आ गई कि आज मैं दुख अशांत परेशान हो गई। आज मैं धन्य होगी इस परिसर में आकर, मेरा जीवन धन्य हो गया। ये परिसर कोई ऐसा परिसर नहीं है, यहाँ आप बैठे हैं। अनुभव कीजिए कि वो हाल है यहाँ सोई परमात्मा शिव परमपिता परमात्मा का अवतरण होता है ब्रह्मा के तन में। और सामने देख के आंखें खोल करके ब्रह्मा बाबा के चित्र को देखे, उनके आंखों से जो किरणें निकल रही हैं मेरे आंखों के द्वारा मेरे शरीर के अंदर प्रभावित हो रही हैं और मेरा अंतकरण शुद्ध हो रहा है। मैं इस ज्ञान के सागर में सुख शांति आनंद प्रेम की अनुभूति कर रही। सामने देखिए एक चमकता हुआ स्टार, वो स्टार कोई और नहीं है, वो स्वयं परमात्मा शिव है। उस परमात्मा शिव की किरण मेरे मस्तक को टच कर रही है, मेरे मस्तक को टच करके मेरी आत्मा को शुद्ध पवित्र शक्तिशाली बना रही है। अनुभव कीजिए जो मैं आज तक अपने जीवन में नहीं पाया वो आज मैंने पाया। इस परिसर में आकर मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। अनुभव कीजिए इस डायमंड हॉल में हम बैठे हैं, हम अपनी आत्मा को पॉजिटिव ऊर्जा से ऐसे चमकाएं, यहाँ से डायमंड बन करके हम जाएं, ताकि जब हम वापिस अपने अपने क्षेत्र में जाएं और हमारे अंदर हमारे संबंधी समाज से भी हमारा परिवर्तन देखकर हमें ऊर्जावान वो शक्तिशाली देखकर वो भी परिवर्तित हो जाए। इन संकल्पों के साथ मैं आप सबको शुभ भावना देती हूँ और शिव बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि हम सब यह संकल्प लें कि हम अपने समाज को समृद्ध और शक्तिशाली समाज मिलकर अवश्य बनाएंगे। जो बड़ों की आश हम पर है अवश्य हम आश पूरी करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, शांति, शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संतोष बेन जी। अब मेरा निवेदन है आज की इस सत्र की चेयरपर्सन परम आदरणीय राजयोगिनी शांता दीदी जी फ्रॉम अजमेर, आप अजमेर सब जोन इंचार्ज हैं और राजस्थान सोशल सर्विस विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। आदरणीय दीदी जी, मम्मा बाबा के साकार में आपने पालना ली, 1954 से आप इस विश्वविद्यालय से जुड़े, जयपुर बीकानेर में 39 वर्ष तक आपने सेवाएं दी। बाप दादा और दादियों ने 2007 से अजमेर का क्षेत्र आपको दिया और आपके नेतृत्व में सैकड़ों सेवा केंद्र चल रहे हैं और आज हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए और इस सत्र में आप चेयरपर्सन का दायित्व निभा रहे हैं, मेरा निवेदन है आदरणीय शांता दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति। आज मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझ रही हूँ कि ऐसे कलिकाल के समय पर हमारी आत्मा के पिता ने हमें कितना जागृत कर दिया और इस कलिकाल के समय में, कलिकाल के युग में रहते हुए भी हम कैसे आराम से, शांति से, सबके साथ प्रेम से भी रह सकते हैं, उसकी युक्ति उस पिता ने हम बच्चों को बता दी। मैं शुरू से ही वैसे भक्ति में भी बहुत थी और जब ज्ञान मिला कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किसकी संतान हैं और वो कैसे अब आकर के हम बच्चों को सत्य ज्ञान से परिचित करा रहे हैं और अपने साथ संबंध भी जुटा रहे हैं, तो भक्ति में उस पिता के बारे में तो ऊपर ऊपर से कहना होता है, लेकिन जब उस हमने 7 दिन का कोर्स किया तो इतनी खुशी मिली और सचमुच में उस पिता के साथ ऐसा संबंध जुट गया जैसे लौकिक पिता से जुटता है। मुझे याद है कि जब हम मधुवन में कई बार जाते थे तो सामने प्रजापिता ब्रह्मा जी बैठे होते थे सवेरे के टाइम पर, और जब वाणी चलती थी और शिव बाबा आकर के उनके अंदर वाणी चलाते थे, तो मुझे आज भी वो घड़ी याद आती है कि कैसे हम सिर्फ नेत्रों से आत्मा की स्वस्थिति में स्थित होकर जब उस परमात्मा के महावाक्य सुनते थे तो कितनी शक्ति कितनी खुशी मिलती थी। तो प्रैक्टिकल में उस पिता ने आकर के हम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का और अपना पूरा परिचय जो दिया और हम बच्चों ने उनसे पूरा अपना संबंध जोड़ लिया, तो आप समझते हैं कि उस परमात्मा से संबंध जुड़ने के बाद कितनी खुशी कितनी शक्ति मिलती है। उसका अनुभव हम आत्माओं ने बहुत अच्छी तरह से किया और मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगी कि आप यहाँ का जो 7 दिन का कोर्स है उसको अच्छी तरह से सुने। 7 लेसन 7 दिन के अंदर आपको मिलेंगे, उसमें आपको खुद पता चलेगा कि वास्तव में हम कौन है और हमारा पिता कौन है, हमारा असली घर कौन सा है। ये पता चलने के बाद नेचुरल उस पिता के साथ संबंध उठेगा और उस पिता से हमें सुख शांति पवित्रता जो हमारी आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है वो भी हम प्रैक्टिकल में प्राप्त करते जाएंगे। सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल में हमारी आत्मा उसकी अनुभवी बनती जाती है और आत्मा में वो शक्ति आती जाती है जिस शक्ति के आधार से आत्मा श्रेष्ठ कर्म का खाता अपना बनाना शुरू कर देती है। क्योंकि आप देखिए इस समय कलयुग है और कलयुग का भी अंत है, देख रहे ना कैसी स्थिति है। तो जब कलयुग का भी अंत है और फिर बाद में क्या आएगा, क्या आएगा, सत्ययुग आना है। तो जब सत्ययुग आना है तो सत्ययुग के लिए हमें क्या करना है कि आज जो आत्मा के अंदर अज्ञानता आ चुकी हुई है, आज जो आत्मा का बुद्धि योग उस पिता से टूट गया हुआ है, हमें उस पिता से संबंध जोड़ करके एक तो श्रेष्ठ कर्म का खाता सतयुग त्रेता के लिए बनाना है और जो द्वापर कलयुग में विकारों में फंस करके जो हमने पाप कर्मों का खाता बनाया उसको योग बल से भस्म करना है। और ये प्रैक्टिकल में हम कर सकते हैं और आपको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप 7 दिन का कोर्स, आप जरा हाथ खड़ा करें जिन्होंने यहाँ पर बैठे हुए 7 दिन का कोर्स नहीं किया हुआ है, हाथ खड़ा करें जरा। और एक कई तो अपने हैं, तो मैं आपसे यही एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये 7 दिन का कोर्स करके और खुद अनुभव करके देखें वो परमात्मा जो हम आत्माओं का वास्तव में पिता है कैसे उसके साथ नेचुरल संबंध जुड़ जाता है और ऐसा संबंध जुड़ जाता है जिससे जब हम उनसे मिलते हैं तो प्रैक्टिकल में हमारे जीवन में शक्ति भी आती है, शांति भी आती है और पवित्रता भी प्रैक्टिकल में आती है। तो मैं तो आपको यही कहूंगी कि आप जिन्होंने ही कोर्स नहीं किया है वो 7 दिन का कोर्स करके और इस चीज का अनुभव करें कि कैसे वो परमात्मा अब सृष्टि पर अवतरित हो चुके हुए हैं और बहुत कम समय अभी रहता है उनका कार्य पूरा जो हो चुका हुआ है और जो रहता है वो कार्य पूरा करके वो तो चले जाएंगे, लेकिन हम आत्माएं उनके होते हुए भी अपना ये भाग्य जो है वो जरूर बना लें। यही मेरी आपसे बार बार क्या कहूँ, विनती है या बहन के नाते से अपने भाई को एक हुज्जत से कहूंगी कि आप ये कोर्स जरूर करिए और कोर्स करके अपने जीवन में प्रैक्टिकल अनुभव करिए कि कैसे हम मनुष्य से देवता, यहाँ पर भी हम वो देवताई कर्मों को सीख करके और अपने जीवन में उतार सकते हैं। मैं तो आपको यही कहूंगी कि आप ये कोर्स जरूर करिएगा, ज्ञान बाबा का जरूर लीजिएगा और आप फिर प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे कि हम भी उस परमात्मा पिता के कितने नजदीक पहुंच सकते हैं, इसी जीवन में ही आप अनुभव करेंगे। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी, आपने श्रेष्ठ कर्मों का खाता बनाने के लिए परमात्मा से संबंध जोड़ने की प्रेरणा दी।
अभी आज के हमारे माननीय अतिथिगण भ्राता दिनेश चहल जी को दीदी जी ईश्वरीय सौगात देकर के सम्मानित करेंगी। और इसके बाद हम सभी दो मिनट ईश्वर पिता की याद में बैठेंगे और अगला सेशन कंटिन्यू जारी रहेगा। आप सभी ने इतने लंबे समय से बड़े धैर्य से सुना, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सभी दो मिनट के लिए बाबा की याद में बैठेंगे।
पल पाओगे